ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। भयमुक्त और विश्वसनीय वातावरण में निर्वाचन संपन्न होगी सुनिश्चित, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। नेपाल नेकपा एमाले द्वारा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए 5 आधारभूत और समृद्धि का 25 नीतिगत काम सहित घोषणा पत्र सार्वजनिक। देश रूपांतरण के लिए नीतिगत प्रस्थान के 100 आधार सहित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का वाचा पत्र सार्वजनिक। निर्वाचन आयोग द्वारा अस्थायी मतदाता नामावली संबंधी कार्यविधि जारी और पाकिस्तान के कराची के सोल्जर बाजार इलाके में गैस लीक से हुई धमाका में कम से कम 16 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। 76वें राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल के उपस्थिति में काठमांडू के टूरीखेल में आयोजित विशेष समारोह में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि फागुन 21 गते तय की गई दिन में ही भयमुक्त और विश्वसनीय वातावरण में निर्वाचन संपन्न होने की सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन को स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न करके देश को दीर्घ लोकतांत्रिक स्थायित्व के नए युग का दरवाजा खोलने के प्रयत्न में जुटे हुए हैं। समारोह में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, नेपाल सरकार के मंत्रियों, राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग के प्रमुख एवं प्रतिनिधि प्रदेश और स्थानीय तह के जनप्रतिनिधियों, सुरक्षा निकाय के प्रमुखों, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारियों की सहभागिता थी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले ने आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन लक्षित घोषणा पत्र सार्वजनिक किया है। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, राष्ट्रीय आकांक्षा हमारी गंतव्य के मूल नारा सहित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने आज एक समारोह बीच घोषणा पत्र सार्वजनिक किया है। घोषणा पत्र सार्वजनिक समारोह में अध्यक्ष ओली ने देश खत्म करने और जलाने का काम मात्र न करने करके बल्कि बनाने के संकल्प के साथ एमाले ने विगत के अनुभव और अभ्यास के कारण देश की दिशा बदलने के काम का अगुवाई करने का दावी किया है। अध्यक्ष ओली ने कहा कि राष्ट्रीयता के पक्ष में एमाले हमेशा दृढ़ होने की स्पष्ट करते हुए नीति और राजनीतिक में स्थिरता न हो तो अर्थतंत्र और विकास की गति भी रुक जाएगी। नेकपा एमाले द्वारा आज जारी घोषणा पत्र में काल करने वाले 11 काम, 5 आधारभूत घोषणा और समृद्धि के 25 नीतिगत काम सहित युवा तथा महिला उद्यम, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि और आर्थिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा ने आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के वाचा पत्र 2082 सार्वजनिक किया है। आज कर्णाली प्रदेश के सुरखेत में पार्टी द्वारा आयोजित सभा में सार्वजनिक किए गए वाचा पत्र में राज्य संरचना, अर्थतंत्र, डिजिटल रूपांतरण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कूटनीति और सुशासन के क्षेत्र में व्यापक नीतिगत परिवर्तन का घोषणा किया है। इसी तरह पार्टी ने रूपांतरण के लिए नीतिगत प्रस्थान का 100 आधार समेत वाचा पत्र में उल्लेख किया है। रासपा ने भाद्र 23 और 24 के हुए जेएनजी आंदोलन के घटना के छानबीन प्रतिवेदन पूर्ण क्रियान्वयन करने की प्रतिबद्धता भी किया। रासपा ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी का व्यवस्था लागू करने की घोषणा किया है। साथ ही पूर्ण समानुपातिक संसदीय व्यवस्था, सांसद मंत्री नहीं बन पाने और गैर दलीय स्थानीय सरकार जैसे एजेंडा सहित संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रीय बहस शुरू करने का प्रतिबद्धता किया है। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा कि नेपाली कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं समेत सरकारी संस्थाओं में राजनीतिक हिस्सेदारी के आधार पर पदाधिकारियों की नियुक्ति के ट्रेड के खिलाफ खड़ी होगी। काठमांडू में आज हुए एक सवाल जवाब कार्यक्रम में कांग्रेस द्वारा कल जारी किए गए चुनाव के घोषणा पत्र के बारे में सभापति थापा ने अपना वादा जताया कि अगली कांग्रेस किसी भी नियुक्ति में किसी की हिस्सेदारी नहीं मांगेगी। सभापति थापा ने कहा कि कांग्रेस संवैधानिक आयोग, यूनिवर्सिटी समेत सरकारी संस्थाओं में पार्टी के करीबी लोगों से बेहतर लोगों की नियुक्ति पक्का करके संस्थागत सुधारों के लिए स्पष्ट अड़ान लेगी। इसी तरह सभापति थापा ने कहा कि चूंकि गठबंधन की राजनीति ने नेपाल की राजनीति को खराब कर दिया है, इसलिए वह ऐसे गठबंधन और समझौते नहीं करेंगे जो पार्टी के मूल्य और विश्वासों के खिलाफ हो। कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भंडारी ने किसी भी प्रकार के मत सर्वेक्षण न करने के लिए संचार माध्यमों से अनुरोध किया है। 10वें निर्वाचन दिवस के अवसर पर आज निर्वाचन आयोग द्वारा काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि निर्वाचन आचार संहिता के अनुसार मत सर्वेक्षण प्रतिबंधित है और यदि ऐसे मामले पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन के दौरान सत्य समाचार को झूठ और झूठे समाचार को सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए सतर्क रहने का आग्रह भी कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त भंडारी ने किया। उन्होंने मतदाताओं से भी किसी के दबाव और प्रभाव में आए बिना सही प्रतिनिधि चुनने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के अंतर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के अनुसार होने वाले चुनाव के लिए आवश्यक अस्थायी मतदाता नामावली संकलन तथा स्थायी मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए अस्थायी मतदाता नामावली संबंधी कार्यविधि 2082 जारी किया है। आयोग ने मतदाता नामावली संबंधी आईन द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए यह कार्यविधि जारी की है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
भाउजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते भाउजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ भाउजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय समाचार समिति की यात्रा को केवल समाचार प्रसारण का इतिहास ही नहीं बल्कि नेपाल की आधुनिक पत्रकारिता का आधार स्तंभ बताया है। राससा के 65वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आज राससा केंद्रीय कार्यालय भद्रकाली में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति यादव ने राजनीतिक और आर्थिक जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर करने पर जोर देते हुए कहा कि सकारात्मक सोच के साथ सभ्य और सुसंस्कृत समाज का निर्माण करना पत्रकारिता क्षेत्र की जिम्मेदारी है और इसमें राष्ट्रसंघ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति यादव ने कहा कि लोकतंत्र की शुरुआत से ही मीडिया ने जनता को जागरूक करने का कार्य किया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जीवित बनाए रखने में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कार्यक्रम में राससा के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र झा ने कहा कि सदैव सत्य, निष्पक्ष और आधिकारिक समाचार सामग्री प्रसारित कर राससा ने देश और लोकतंत्र के पक्ष में अतुलनीय भूमिका निभाई है। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने कहा कि आगामी निर्वाचन के लिए आवश्यक सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है, इसलिए मतदाताओं से उन्होंने निश्चिंत होकर इसी फागुन 21 गते मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का आह्वान किया है। आज आयोजित केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में गृहमंत्री अर्याल ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही निर्वाचन सम्पन्न होगा। उन्होंने सभी संबंधित निकायों के सहयोग और समन्वय से निर्वाचन निर्धारित तिथि पर ही संपन्न होने के प्रति विश्वास व्यक्त किया। बैठक में तीनों सुरक्षा अंगों के प्रमुखों तथा जिला सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों ने गृहमंत्री अर्याल को जानकारी दी कि सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं की जा रही है और क्रमिक रूप से जिला स्तरीय सुरक्षा रणनीति को लागू किया जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के कराची के सोल्जर बाजार इलाके में गैस लीक के धमाका हो गया, जिस से एक रिहायशी इमारत का हिस्सा गिर गया। इस हादसे में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। बीबीसी उर्दू के मुताबिक 1122 इमरजेंसी सर्विस के प्रवक्ता हसन हबीब ने बताया कि गुल राना कॉलोनी में सुबह करीब 3:45 पर गैस लीक की वजह से धमाका हुआ। इससे इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मरने वालों में बच्चे भी शामिल है। सोल्जर बाजार पुलिस के अनुसार यह हादसा एक निजी स्कूल के पास बनी रिहायशी इमारत में हुआ। जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। इसलिए रेस्क्यू टीम को घटनास्थल पर पहुंचने में काफी मुश्किल हुई है। सिंध के मुख्यमंत्री के प्रवक्ता अब्दुल राशिद चन्ना के बयान जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री ने सोल्जर बाजार में गैस लीक से हुए धमाके पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को तुरंत मलबे में दबे लोगों को निकालने का निर्देश दिया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। भयमुक्त और विश्वसनीय वातावरण में निर्वाचन संपन्न होगी सुनिश्चित, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। नेकपा एमाले द्वारा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए 5 आधारभूत और समृद्धि का 25 नीतिगत काम सहित घोषणा पत्र सार्वजनिक। देश रूपांतरण के लिए नीतिगत प्रस्थान के 100 आधार सहित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का वाचा पत्र सार्वजनिक। निर्वाचन आयोग द्वारा अस्थायी मतदाता नामावली संबंधी कार्यविधि जारी। और पाकिस्तान के कराची के सोल्जर बाजार इलाके में गैस लीक से हुई धमाका में कम से कम 16 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।